देखिए अहंकार भी दो तरह के होते हैं, एक तो देह का अहंकार होता है, देह को जब मैं समझता हूं, मैं अर्थात अपने आप को जब देह समझता हूं तो देह को शो करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो फैशन के द्वारा शो करने की कोशिश करूं, चाहे वो गुणों के द्वारा, चाहे वो सेवा कर्म के द्वारा, और हर एक्टिविटी में वो कहीं ना कहीं हमारा जो है रिफ्लेक्ट होता है, वो लोगों के आगे प्रकट होता है। इसीलिए जब मेरे काम की कोई तारीफ करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और एक दूसरा अहंकार है जिसको मां जी कर्तापन का अहंकार कह रहे हैं, मैं एक इंडिविजुअल बीइंग हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। तो ये जो आपका व्यक्तित्व है, ये जो आपका मैं भाव है, इसको भी अहंकार ही कहते हैं। तो आप इन दोनों प्रकार के अहंकार को अहंकार ही कह लीजिए, क्योंकि कहने में दोनों अहंकार ही आते हैं। जबकि यदि हम अध्यात्म विद्या पढ़ें तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है, ईश्वर के बारे में जब भी कहीं वर्णन आता है तो एक ही बात लिखी होती है, केवल वही है। जैसे कि हमारा महामंत्र भी है तो उसमें अद्वैत पुरखा लिखा हुआ है, तो जब वहां अद्वैत पुरखा लिखा हुआ है, अद्वैत का मतलब होता है जहां दो नहीं, अर्थात केवल वही। तो दो नहीं है तो केवल वही, तो वो अद्वैत पुरुष है। ईश्वर जो है या उसको ब्रह्म कह लें, केवल वही है। जब केवल वही है विचार करके देखो मेरा अस्तित्व कहां से आ गया था, इस पूरी सृष्टि में केवल वही है तब मेरा अस्तित्व वहां क्या हो सकता है। यदि मेरा अस्तित्व है तो मैं हूं और वो भी, और क्योंकि वो अद्वैत पुरुष है, केवल वही है, इसीलिए वो सर्वव्यापक भी। जब केवल वही है तो सब जगह वही तो होगा ना, तो सर्वव्यापक भी। और इसके साथ साथ तीसरी क्वालिटी भी है, वो कल्याण मुहूर्त भी है, कल्याण का स्वरूप है वो, या वो कल्याण रूप है। इसका मतलब यदि मैंने अपना कल्याण करना है तो मुझको भी अद्वैत रूप ही बनना पड़ेगा, उसी का नाम मोक्ष। जहां दूसरे का अस्तित्व ही ना रहे उस स्थिति का नाम मोक्ष है, उस स्थिति का नाम निरअहंकार स्थिति है। तो आज मैं कहां खड़ा हूं, मैंने पहुंचना कहां है, तो जब ये अध्यात्म विद्या पढ़कर या सत्संग श्रवण करके इन बातों पर गहराई से विचार करता है तब इसको पता लगता है कि व्यक्ति बने रहना, इंडिविजुअल बने रहना, ये अपने आप में सबसे बड़ा पाप है जीव के लिए। क्योंकि जब इंडिविजुअल बने रहोगे तो देह भी बनी रहेगी आपकी, जीव बिना देह के तो नहीं रहता। मैंने जब से होश संभाला है देह मेरे साथ रही और ये देह मर भी जाएगी तो तुरंत ही बीच में बिना टाइम गैप के नई देह जीव के साथ फिर तैयार हो जाएगी। जिसके लिए महाराज ने खुद कहा, प्रेमी एक देह त्याग करने पर दूसरी देह प्राप्त होने में कोई भी बीच में टाइम नहीं लगता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जन्म मृत्यु जैसे स्वप्न होता है तो स्वप्न बनने में कोई टाइम लगता है क्या? स्वप्न में इतना बड़ा शरीर आपको मिलता है, जैसी नींद आती है स्वप्न आपका शुरू हो जाता है, तो टाइम तो नहीं लगा वहां पर देह बनने में। उसी प्रकार महाराज कह रहे हैं, प्रेमी ये संकल्प जगत है, ये संकल्प से तैयार होता है, इसलिए जीव जिस प्रकार के संकल्प लेकर देह का त्याग करता है उसी प्रकार के संकल्प के अनुसार उसकी नई देह तैयार हो जाती है। तो ये तो ये जो अहंकार है इसको मैं भाव कहते हैं या इंडिविजुअलिटी कहते हैं इसको, तो महाराज कह रहे हैं ये है कर्तापन के कारण, इसका कारण कर्तापन है। तो इसको भी अहंकार या मूल अहंकार कहा जाता है। तो इस मूल अहंकार को ही आपने खत्म करना होता है, तो इसीलिए उस स्थिति का नाम है आत्मलीनताई। महाराज जी जो शब्दों में कह रहे हैं आत्मलीनताई, अर्थात आत्मा जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, जो अद्वैत पुरखा कह रहे हैं, तो वही आत्मा सब जगह व्याप्त है, तो ये जीव उस आत्मा में ही मिलकर एक हो जाता है, इसलिए आत्मरूप ही ये हो जाता है। तो वहां जाकर इस जीव का परमानेंट पेन खत्म होता है। लेकिन हमारी जो दैनिक क्रिया है इसमें जो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, तो ये अहंकार मां जी कह रहे हैं, प्रेमी सेवा से, सेवा भी कौन सी, निष्काम सेवा, सेवा से अहंकार का नाश होता है। समता विलास में लिखा हुआ है साफ साफ, इस सेवा से अहंकार का नाश होता है। तो अब बताइए, सेवा भी यदि आपके अंदर मैं भाव पैदा कर रही कि मैं सेवा कर रहा हूं, देखो कितनी सेवा मैंने कर चुका हूं, कितनी सेवा मैंने की है, तो ये जो आप बार बार जो मैं कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपने आप को देह करके देख रहे हो। कि महाराज कह रहे हैं प्रेमी, देह जो है पांच तत्व से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और संसार भी पांच तत्व से बना है। तो जो मेटेरियल संसार का है, जो मेटेरियल पृथ्वी का है, वही मेटेरियल आपकी देह का भी। तो पांच इन तत्वों के पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अहंकार आपके अंदर स्वाभाविक रहेगा ही रहेगा यदि आप अपने आप को देह समझ रहे, जो कि आप हो नहीं। यदि आप देह होते तो सीधी सी बात है, जिस समय देह की डेथ हुई लोग उसको जला देते, फिर ये पंडित लोग कर्मकांड आपसे क्यों करवाते हैं, और आप पैसा खर्च करके उनसे कर्मकांड क्यों करवाते हो, गति के लिए प्रयास क्यों करते हो? यदि आप देह ही हो तो आपको तो देख रहे हो ना। महाराज कह रहे हैं, प्रेमी देह की गति यही है कि पानी में बहा दी जावे, पृथ्वी में गाड़ दी जावे, या अग्नि में जला दी जावे, देह की गति हो गई। फिर आप इतना लंबा चौड़ा कर्मकांड क्यों करवाते हो? फिर हर साल श्राद्ध करते रहते हो, किसकी गति करवा रहा है? जो कर्म मैं कर रहा हूं, सारा समाज कर रहा है, तब भी समाज उस पर सोचने को तैयार नहीं है। इसलिए अंधविश्वासों में हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, और ये मौलवी पंडित ये मुल्ला ये सब हमारा फायदा उठाते हैं, हमको मूंढते रहते हैं, और हम ऐसे बुद्धू के बुद्धू रहते हैं। किसी बात का कोई निर्णय ही नहीं करते। लेकिन जब अध्यात्म विद्या सीखते हैं, जिसके लिए हम गुरु धारण करते हैं, कि गुरु आपको अध्यात्म विद्या ही तो सिखाएगा, मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, मेरे दुखों का इलाज क्या है, जिस ईश्वर का हम नाम लेते हैं हर चीज में, वो ईश्वर क्या है, बिना ईश्वर के तेरी जिंदगी बर्बाद क्यों है, सारा विज्ञान समझते हैं। जिसको सुख करके देख रहा है तुझको पता ही नहीं है, यही तो दुख का स्रोत है तेरे जीवन में। जितना बड़ा सुख तैयार करेगा उतना ही बड़ा दुख तेरे जीवन में आएगा ही आएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये ईश्वर का नियम है, ईश्वर की कुदरत का नियम है। जो मनुष्य संसार में जितना ज्यादा सुख भोगने की कोशिश करेगा उतना ही वो दुख सहन करेगा ही करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि महाराज कह रहे हैं प्रेमी, हर सुख दुख में बदल जाता है, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। तो अब बताइए, जब सुख से ही दुख उत्पन्न होता है तो मैं ज्यादा सुख भोगने की कोशिश करूं, ज्यादा सुख इकट्ठे करने की कोशिश करूं, या सुख दुख में सम रहने की कोशिश करूं? तो संसार आपको सिखाता है कि सुख इकट्ठे करो, और गुरु आपको सिखाता है कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। गुरु से हम ईश्वर की उपासना तो सीखते हैं। तो गुरु लिखकर क्या दे रहा है कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। तो ईश्वर की उपासना का उद्देश्य तो गुरु यह बता रहा है, और हम क्या करते हैं? गुरु धारण करते हैं तब भी यही सोचते रहते हैं, महाराज जी ने मेरा ये काम सिद्ध कर दिया, महाराज जी ने मेरा वो काम सिद्ध कर दिया, महाराज जी मुझे इस तकलीफ से बचा लेंगे, महाराज जी मुझे उस तकलीफ से बचा लेंगे। तो संसारियों की नजर तो वहीं पड़ी हुई है कि दुख मेरा महाराज जी छीन लेंगे और सुख मुझे प्रदान कर देंगे। तो ना गुरु की बात ठीक से सुन रहे हैं, ना गुरु की बात ठीक से पढ़ रहे हैं, ना उस पर ठीक से चिंतन कर रहे हैं। अब जब संतविलास में ये वचन पढ़ो कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है, तो विचार तो करो, गुरु को हमने क्या समझ रखा है और गुरु क्या सिखाना चाहता है हमको? ये तो सब जानते हैं ना कि गुरु ईश्वर की उपासना सिखाता है। भाई गुरु से मंत्र प्राप्त होता है, उपासना के लिए तो होता है। तो ईश्वर की उपासना सुख दुख में सम रहने के लिए है। तूने गुरु तो धारण कर लिया और सुख की लालसा कम करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मुझे और सफलता मिलेगी क्योंकि मैंने ठीक गुरु धारण किया है। तो हमारी बुद्धि कहां खड़ी हुई है बताओ? तो कोई भी ठीक बात हमको समझ में नहीं आती। कारण यह है कि मैं इस भाव से ही मुक्त नहीं होता, मेरे अंदर ये विचार ही घर नहीं करता कि गुरु सबसे पहले मुझको कह रहा है कि तू जीव है, तू देह नहीं है, तू इस देह में कैद है, और इस कैद की कितनी सजा मिलती है, इस देह के कारण तू कितने दुख भोगता है, अनगिनत दुख भोगता है, और उन्हीं दुखों के सुखों के संस्कार लेके तू देह का त्याग करता है, फिर नई देह तेरी तैयार हो जाती है, वहां फिर यही प्रोग्राम तरह चालू रहता है। तो यदि मैं गुरु की इस बेसिक बात को सीखने की कोशिश ना करूं तो ना जिंदगी में कभी आपका अहंकार का कोई इलाज बन सकेगा, ना को कर्तापन दूर करने का कोई इलाज बन सकेगा। तो पहली चीज जो है सीखने की अध्यात्म मार्ग की, वो ये है कि मैं कौन हूं। इसीलिए चाहे गीता पढ़ो, चाहे संतविलास पढ़ो या अन्य कोई शास्त्र पढ़ो, सबसे पहले आपको ये एक सिद्धांत सिखाया जाता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसको गीता के प्रारंभ में ही दूसरे अध्याय में लिख दिया गया कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार ये जीव पुरानी देह त्याग कर नई धारण करता है। और यही बात महाराज जी ने भी जीवन सार सिद्धांत में साफ साफ लिखी। और वाणी भी कह रही है, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। अब तो वाणी साफ कह रही है, कर्म गति अपार है, इसी कोई लिमिट नहीं है, जीव नहीं छूटन पाए, जीव इससे छूट नहीं सकता, इससे छूट नहीं पाता, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, जिस कामना को लेकर यह देह का त्याग करता है उसी कामना के अनुसार उसको रूप अर्थात नया शरीर मिल जाता है। अब गुरु की वाणी इतना स्पष्ट एनालिसिस दे रही है, इतना स्पष्ट निर्णय दे रही है, क्या विचार करो कि इस निर्णय को कभी भी मैंने अपने ऊपर ढालने की कोशिश की? तो जीव नहीं छूटन पाए, साफ तो वाणी कह रही कि मैं जीव हूं, मैं छूट नहीं पाऊंगा इससे। तो जो कुछ भी मैंने अच्छे बुरे कर्म कर लिए हैं सबका फल मैंने भोगना ही है, जो संस्कार बना लिए एक क्रिया को बार बार करके, एक सुख को बार बार भोग के जो संस्कार बना लिए मैंने, वो संस्कार भी मेरे संग जाते हैं। तो ये सारी चीजें, चाहे वो आपका कर्म फल है, चाहे वो आपका प्रारब्ध है, चाहे वो आपके सुख दुख के संस्कार हैं, चाहे वो आपका स्वभाव है, ये सारा का सारा आपके सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम मन कहते हैं। तो अध्यात्म में सूक्ष्म उसे कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो देह आपकी कंबाइंड इफेक्ट है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन और देह, ये दोनों हमेशा संग रहते हैं। जब ये दोनों संग रहते हैं हमेशा ही, मन स्वतंत्र नहीं रहता। विचार करो, जब ये देह आप जला दोगे तो ये मन नई देह तैयार करेगा नहीं करेगा? तो ईश्वर शक्ति से मन जो है नई देह तैयार इमीडिएटली कर लेता है, जैसे स्वप्न में आपकी रचना होती है, और स्वप्न का बोध आपको है। जागने के बाद आपसे पूछा जाए तो भले ही आपने शास्त्र ना पढ़े हो, आप ये जनरल ये बात कहते हो कि जैसे मन में ख्याल आए वैसे ही स्वप्न दिखाई पड़ने लगा, ये कहते हो नहीं कहते? लेकिन ये नहीं सोचते, कहते रहा हूं ये जैसे मन में ख्याल आए वैसी वैसी मेरी देह की रचना होगी, वैसी संसार की रचना होगी, लेकिन ये करिश्मा है क्या चीज? सत्पुरुष इस स्वप्न की रचना को, इस संसार की रचना को एक जैसा बता रहे हैं, सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, वाणी तो साफ कह रही जैसे रात्रि का स्वप्न है उसी प्रकार ये संसार का भी वैसा ही खेल है। लेकिन इस बात का निर्णय तब होता है जब ये जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात अपने असली स्वरूप को जानता है, जिसको हम साधारण रूप में ईश्वर कहते हैं या आत्मा कह देते हैं। तो इसका मतलब ये जो जीव है यानी मैं जो हूं और ये जो ईश्वर है, इन दोनों में अंतर क्या हुआ फिर? भाई ईश्वर भी बिना देह का है और जीव भी बिना देह का, देह मिलती है उसको, जिसके बारे में गीता कह रही है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, अर्थात उसी प्रकार ये देह जो है वस्त्र की तरह से है, जीव के ऊपर चोला बदल जाता है, नया वस्त्र या अर्थात नई देह धारण कर लेता है। तो देह जो है वो कपड़े से तुलना करके हमको बात समझाई जा रही है, और महाराज जी की वाणी भी कह रही है कि जैसे जीव क्या करता है उसको जैसी कामना होती है वैसे नया रूप वो धारण कर लेता है। तो इसका मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे वचन, ये वाणी सुनने के बाद एक निर्णय तो बड़ा स्पष्ट है कि जीव अलग है और देह अलग है। जीव नाशवान नहीं है, देह नाशवान है। जीव में होश है, देह जड़ है, देह में होश नहीं है, होश मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं देह में होश है। देह में होश किसका है? मेरा होश है देह में, देह में होश नहीं है अपने आप में, देह तो जड़ वस्तु है। इसलिए साइंस यदि, मेडिकल साइंस यदि डेवलप हो जाए, आपका कोई भी ऑर्गन बदला जा सकता है, हार्ट भी आपका बदला जा सकता है, लंग्स भी आपके बदले जा सकते हैं, नया इनका निर्माण भी किया जा सकता है। जब जेनेटिक साइंस डेवलप होती है तो जीन से नए ऑर्गन तैयार कर लेते हैं। तो ये तो मशीन की तरह से हो गई, जो पुर्जा खराब हुआ बदल दो। लेकिन कोई डॉक्टर दुनिया का जीवन पैदा कर सकता है क्या? जो जीवन जीन्स भी पैदा कर रहा है तो जीन्स क्या उस जीवन को पैदा कर लेंगे? जान यदि देह के निकल जाए तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए मोटे मोटे रूप में आप संसार की बातें और करतार की बातें आप सुनते रहो, सत्संगों में भी सुनते रहो, और एक जनरल निगाह से आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ती रहो, तो आप देखते होंगे कि जहां जीव लिखा है आप उसका अर्थ हमेशा मनुष्य करते रहते हो। आपने हजार बार जीव सुना होगा, हजार बार जीव पढ़ा होगा, लेकिन हमेशा उसका अर्थ क्या समझते हो? मनुष्य करते हो। ऐसे भी मैंने स्टेटमेंट सुने लोगों के, जब उनसे पूछा जाए तो क्या देते हैं, वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है नहीं, तो उसके अंदर से जीव निकल जाता है। कोई व्यक्ति मरता है तो उसके अंदर से जीव निकल जाता है। जैसे व्यक्ति मर गया, जीव कोई हवा हो निकल जाती है कहीं से, मतलब तो उसकी सोच में जीव का कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ भी कह देता है। ये भी कह देगा मेरे अंदर जीव परेशान है, देखो मेरे अंदर जीव परेशान है, मैं देह हूं और जीव से कोई चीज है जो परेशान है। ये सारी बातें हम क्यों करते हैं? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। 20-20 साल सत्संग सुना हमने, इस बात पे सोचा ही नहीं कभी कि गुरु की सारी वाणी तो जीव की बात कर रही है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर सतगुरु उसके दुख दूर करने आया है। संसार से उद्धार का क्या मतलब हुआ? संसार से में जो दुखी होता है जीव, उसका उसे दुखों से उद्धार करने आया है। और जीव दुखी क्यों होता है? देह के कारण दुखी होता है। देह है तो दुख है ना, इसका मतलब जीते जी मैंने इस देह से मुक्त होना है, जीते जी इस देह से मैंने मुक्त होना है। तो ये मुक्त होके कहां जाएगा जीव? इस देह से मुक्त कौन है? जो ईश्वरीय सत्ता है, जो इस जिस्म के अंदर जान की तरह से है, जो इस जिस्म को चला रही है। मुझे पता है ना, मैं देह को जीवित नहीं रखूंगा, वो ईश्वर शक्ति है जो इस देह को जीवित रखे हुए। तो वो इस देह से मुक्त है या नहीं? ईश्वरी शक्ति तो इस देह से मुक्त है। तो जो देह के बंधन से मुक्त है, दुख के बंधन से मुक्त है, उसका नाम है ईश्वर। और फिर जीव कौन है? जो देह के बंधन से युक्त है, जो सुख और दुख में फंसा हुआ है, वो जीव है। तो यदि मैंने मुक्त होना है देह के अहंकार से, कर्तापन के अहंकार से, और सुख दुख के बंधन से मुक्त होना है, तो मुझको ईश्वर का संग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, जो इस बंधन से मुक्त है? इसलिए जो बंधन से मुक्त है वही मुझको इस बंधन से मुक्त करवा सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं। तो महाजी कह रहे हैं कि प्रेमी, तुझको ये मनुष्य देह और इसमें बुद्धि क्यों दी गई है? तो वाणी स्पष्ट निर्णय दे रही है नहीं दे रही है? मानुष जन्म सफल होवे, जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। मानव देह ये दुर्लभ जन्म है तेरा, उसको मानव देह दी गई है, ये किस वास्ते दी गई है? ये सबसे कीमती चीज है पूरी सृष्टि में, मानव देह सबसे कीमती चीज है, ये क्यों दी गई है तुझको? प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। और तू इसका क्या यूज कर रहा है? आ सकते तूने इसका क्या यूज किया है? विचार करके तो देख, जैसा तेरा बिजनेस अच्छा चल जाए उसका अहंकार, जैसा तेरा पद बड़ा हो जाए, चार लोग सम्मान कर लें उसका अहंकार। तो तू इस देह भाव को गहरा कर रहा है या इस देह भाव को से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है? तेरे जीवन जीने का तरीका तो देख तू जरा। तो तूने बचपन से आज तक उल्टा तरीका अपनाया है, अर्थात तूने मानव देह का दुरुपयोग किया है। मानव देह का एक ही सदुपयोग है, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। गुरुवाणी क्या कह रही है? तो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई ये बात? करी नहीं सिखाई। यहां आके पता लगता है कि बिना गुरु के गति नहीं। क्यों कहा जाता है बिना गुरु के गति नहीं? कि बिना गुरु के बात समझाया कौन? यहां आके पता लगता है कि शास्त्र पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बातें सुनने से समझ में नहीं आती है। सुनोगे पता नहीं कहां ख्याल है आपका, किस भाव से सुन रहे हो, अपनी अपनी धारणा है। पास बैठ के शायद कोई समझाए तो समझ में आ जाए बात, जैसे गुरु शिष्य की वार्तालाप होती ना। तो इंडिविजुअल, जैसे वैद्य है तो रोगी उसके पास है, तो वैद्य उस रोगी के हिसाब से ही सारी बात करता है। तो रोगी को रोग भी समझ आ जाता है, उसका उपचार क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, वो भी उसको समझ में आती है। तो इसीलिए या तो फिजिकली गुरु आपको उपलब्ध हो, आपके पास बैठा हो, तो जैसी आपकी बीमारी होगी वो आपको बताएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा है उसके साथ, प्रेम है आपका, आप मानोगे। नहीं तो फिर गुरु की बात पे आपने गहरा विचार करना पड़ता है। तो गहरा विचार करने का मौका कब मिलेगा? सत्संग सुनने में तो गहरा विचार हो ही नहीं सकता वहां, क्योंकि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे दरिया में पानी बह रहा है, ताजा पानी आ रहा है, और जो आपने एक मिनट पहले पानी देखा था वो कहां का कहां पहुंची है। तो विचार तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके फ्लो में आप बैठे हो, अच्छा लग रहा है आपको, कुछ चीजें आपको समझ आ रही हैं, लेकिन निर्णय कोई नहीं हो पा रहा। जब तक आप मनन प्रक्रिया से नहीं गुजरोगे आपका निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए जब शास्त्र सामने खुला होता है, समता विलास वाणी सामने खुली हुई है, एक ही दोहा आपके सामने आ गया, मान लिया, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए। तेरे चित्त में वो प्रभु आ जाए। अभी चित्त में क्या है? तेरे मन में क्या है? संसार बैठा हुआ है। जब तेरे चित्त के अंदर, तेरे मन के अंदर ईश्वर बैठ जाए कि मेरे जीने का उद्देश्य एक ही है, इस ईश्वर को जानना, इस ईश्वर से भेंट करना, कैसे करूंगा वो मार्ग सीखना, जो मार्ग सीखा उस पर निरंतर चलने की कोशिश करना, तब आपने समझ लो कि ये दोहा आपने सीखा कि मानुष जन्म सफल हो गए। यदि ये काम छोड़ के तू कुछ भी कर रहा है, तूने पूरे जगत की खूब डट के सेवा करी, पूरे जगत की सेवा करी, जितनी ताकत थी तूने सब लगा दी सेवा में, प्रभु के सिमरन कारने ये कहां काम किया तुमने? तेरी जो समाज सेवा है तेरे देह अहंकार को खत्म कर देगी? वो ये असंभव बात है। तेरे कर्तापन को खत्म कर देगी? तो यही याद करेगा, देखो मैंने कितने लोगों का रोग ठीक कर दिया, कितनी धर्मशालाएं बनवा दी मैंने। तो ये अपना कर्तापन ही याद आएगा, कहां ईश्वर याद आएगा? लेकिन गुरु क्या कह रहा है? ईश्वर प्राप्ति के लिए सेवा करनी है। गुरु तो क्या कह रहा है? सेवा, वो निष्काम सेवा करनी है। निष्काम सेवा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि इस सेवा के द्वारा तूने कामना खत्म करनी है। इस प्रकृति में सेवा का कोई महत्व नहीं है, पूरी प्रकृति में इस मनुष्य की सेवा का बिल्कुल दूर दूर तक कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि सारी प्रकृति ईश्वर के अधीन कार्य कर रही है। तो मनुष्य की देह प्रकृति से ऊपर नहीं है, ये प्रकृति का अंश है। ये जड़ देह, जड़ जो पृथ्वी है, इसी से उत्पन्न होती है, इसी में समा जाती है। तो बताइए कि गुरु सेवा आपको क्यों सिखाना चाह रहा है? कि वो तुझको निष्काम करना चाह रहा है, तेरी कामना को खत्म करना चाह रहा है। कि कामना ही बंधन है जीव और ईश्वर के बीच में, कामना की दीवार खड़ी है, जिसको महाजी वासना कह रहे हैं। और वासना पैदा कहां से हो रही है? कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुखसार। क्या साइंस है ये? परफेक्ट साइंस वाणी में लिखी है? नहीं लिखी, लेकिन मैंने इस विज्ञान को कभी सीखा? मैं करता हूं तेरे अंदर ये जो भाव है, यही तुझको ईश्वर से और अन्य जीवों से अलग कर रहा है। तू एक इंडिविजुअल बना हुआ है। जो चीज लिमिटेड है, याद रखे, जो भी चीज लिमिटेड है वो परिवर्तनशील होती है, वो नाश भी होती है, वो उत्पन्न भी होती है। जैसे तेरी देह लिमिटेड है ना, ये नाश भी होगी, परिवर्तन भी होगा इसका। तो अब बताइए, यदि तू देह बन के घूम रहा है तो इस परिवर्तन को तू रो सकता है कभी? जवानी का सुख तूने यदि भोगा है तो बुढ़ापे का दुख तो ही तो भोगेगा ना। जवानी का सुख जिसने भोगा है, बुढ़ापे का दुख वही तो भोगेगा। स्वास्थ्य का सुख जिसने भोगा है, बीमारी का दुख भी तो वही भोगेगा। जन्म का सुख जिसने भोगा है, मृत्यु का दुख भी तो वही भोगेगा। तो सारी सृष्टि में हर चीज द्वंद्व रूप है। मैं किस वहम में जी रहा हूं? महाराज कहते प्रेमी, एक एक जन्म तुझे एक एक लाख साल का भी मिल जाए, एक एक हजार वर्ष का भी मिल जाए, तो दुखी का दुखी ही रहेगा। क्योंकि तू इस विज्ञान को समझ ही नहीं रहा है कि सारी प्रकृति ये द्वंद्व रूप है। हर वस्तु जो जो कोई भी नाम ले लीजिए, वो जोड़े से है। सुंदरता है तो बदसूरती है, काला है तो गोरा है, ठंड है तो गर्मी है, सूखा है तो बरसात है, सुख है तो दुख है, छोटा है तो बड़ा है, मान है तो अपमान है। हर चीज द्वंद्व रूप में है ना। और द्वंद्व का मतलब होता है कि एक दूसरे को नष्ट कर रही है, एक दूसरे का निर्माण कर रही है। द्वंद्व का मतलब ये होता है, एक दूसरे को जन्म दे रही है और एक दूसरे को नष्ट कर रही है। एक से ही दूसरी चीज पैदा हो रही है। इसीलिए तू संसार में कोई भी स्थिति कायम रखना चाहे तो वो कायम रहेगी ही नहीं। इसीलिए समतावलासी महाराज ने लिख के छोड़ा है कि हर सुख दुख में बदल जाता है। जब ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है, जैसे हमारे यहां होता है सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, तो ये कानून कुदरत है, तो किस बेहोशी में जी रहा है? क्या उम्मीदें तूने संसार से बनाई हुई? तो कितना बड़ा धोखा मैं अपने साथ कर रहा हूं इस विज्ञान को ना सीखकर। कितना बड़ा धोखा कर रहा हूं, पैसे के ख्वाब देख रहा हूं, नाम के ख्वाब देख रहा हूं, अपनी करनी के ख्वाब देख रहा हूं, दुनिया में नाम कमा के जाऊंगा। आया था तो नाम मिटाने के लिए, तू नाम कमा के जाएगा। नाम मिटाने का मतलब तूने देह के अहंकार से मुक्त होना था। नाम मिटाने का मतलब यह है कि मैं देह हूं, इस भाव से तूने मुक्त होने के लिए ईश्वर की पूजा करनी थी। इस भाव से मुक्त होने के लिए तूने गुरु धारण किया है और तू ये इसी की कमाई करना चाह रहा है, इस नाम को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो इसीलिए जब तक ये बात आपके अंदर नहीं आती, आप देह के अहंकार को क्यों कम करने की कोशिश करो? तभी तो महाजी कहते प्रेमी, दान कर, लेकिन एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना लगे। क्योंकि दान का अहंकार यदि तेरे अंदर आ गया मैंने किया, तो दान का उद्देश्य खत्म हो गया। दान का तेरा उद्देश्य ही खत्म हो गया। तो अब बताइए कि सेवा गुरु कह रहा है निष्काम बनने होने के लिए, इसलिए वो निष्काम सेवा की बात कर रहा है। गुरु तू सेवा की बात कर रहा है, तो ये तेरे अंदर होश कब बना रहेगा कि सेवा करने वाला प्रभु है? ये तब बना रहेगा जब तुझको ये होश होगा कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। तेरे हाथ से जो सेवा हुई है ये प्रकृति सेवा ले रही है, ये तुझको प्रारब्ध दिया गया था, तू सेवा नहीं कर रहा है। सेवा करते हुए तुझको उसका धन्यवाद करना चाहिए था, हे प्रभु तूने इतना अच्छा कर्म इस देह को करने के लिए दिया, ऐसा प्रारब्ध दिया कि इस देह से सेवा हो रही है। तो जब सेवा करने का मौका आए तुझे प्रभु की याद में तू डूबा होना चाहिए, प्रभु की याद आए तुझे, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। प्रारब्ध तू इस देह को ऐसा भी तो दे सकता था इससे किसी का कत्ल होता, कत्ल भी तो इसी देह से होते हैं, और इसी देह का प्रारब्ध ऐसा भी दे सकता है किसी की सेवा हो रही है, किसी का दुख दूर हो रहा है। तो ये प्रारब्ध मैं तो छांट के नहीं लाया था ना, मैं तो कामना का बंडल मन में बांध के लाया था, लेकिन उसमें से एक पैकेज प्रारब्ध के रूप में इस देह को अलॉट किया गया प्रभु के द्वारा। यही तो क्या प्रभु ने, उसके बंधन में तू जी रहा है, यही तेरी जन्मपत्री है, यही तेरे स्टार्स है। तो जन्म कुंडली तो मैं साथ लेके आया ना, ये तो हमारे जो ज्योतिषी पालते हैं वो भी तो ये कह रहे हैं, हम जो पंडित पालते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि तेरे जो ग्रह हैं बदल कोई नहीं सकता। यदि कोई पंडित कहता है ये पूजा करने से बदल जाएंगे तो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि उसने पैसा कमाना है, अपनी जीविका चलानी है। आप मूर्ख ऑलरेडी हो क्योंकि आप ईश्वर की बात पढ़ते ही नहीं हो, जानते नहीं हो, तो मूर्ख तो हो ही आप। तो मूर्ख को मूर्ख बनाना कौन सी गलत बात है जी, बना रहा है आपको, आप बन रहे हो। आप भी लोभी हो, वो भी लोभी है। तो इसीलिए जब आप सेवा करते हो तो बिना प्रारब्ध के आप सेवा कर ही नहीं सकते। मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझको इस बात का होश होना चाहिए कि प्रभु ने ये सत्कर्म करने का मौका मुझको दिया है, ये उसकी कृपा है। मुझे ये अहंकार याद आया कि देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूं, कितने लोगों को प्रभावित करता हूं, इस मूर्खता की जगह मुझे ये याद आना चाहिए कि प्रभु तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, ऐसा कर्म करने को तुझे मैंने दिया है कि मुझे तेरी याद आ रही है। बच्चे पालते तो कहते हैं ना, मैं अपने बच्चे पाल रहा हूं या ईश्वर के बच्चे पाल रहा हूं, कभी ये भाव आता है? तो स्वार्थ कर्म में ये भाव नहीं आ सकता आपके अंदर, परमार्थ कर्म में ही ये भाव आता है आपके अंदर। तो इसीलिए निष्काम होने के लिए सेवा कहिए गुरु ने। तो मैंने जो सेवा है इसलिए पांच नियम के अंतर्गत करनी है। पांच नियम महाराज ने क्यों बनाए? आत्म उन्नति के लिए बनाया ना। समझा क्या लिखा हुआ है? आत्म उन्नति के ये पांच नियम, ये तो लिखा हुआ है। आत्म उन्नति का मतलब कि आत्मा की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, ईश्वर की ओर मैं निरंतर बढ़ रहा हूं, ये हुआ नहीं मतलब। तो जब ईश्वर की ओर मैं निरंतर बढ़ रहा हूं तो ये मेरी आत्मिक उन्नति हुई नहीं हुई? तो सेवा उसका अंग हुआ नहीं हुआ? आत्म उन्नति का अंग हुआ नहीं हुआ? तो आत्म उन्नति का मतलब देह मद से जैसे जैसे सेवा करो देह मद से आप स्वतंत्र होते चले जाओ, देह का अहंकार आपका कमजोर पड़े, लेकिन सेवा मैं कर रहा हूं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं ये भाव आया तो आपका अहंकार बढ़ रहा है। तो इसलिए विवेक आपके अंदर स्ट्रांग होना चाहिए, संसार के बारे में, अपने बारे में, करतार के बारे में विवेक, सही समझ, जो चीज जैसी है वैसी ही समझना। तो विवेक कहां से मिलता है? ये शास्त्रों से तो मिलता है। यदि हम कहें संतावास क्या है, ये पूरा का पूरा विवेक है। इस विवेक के प्रकाश में आपने कर्म कैसे करने हैं, भक्ति कैसे करनी है, ये सारा जो है वो धर्म का मार्ग है। इसमें यही तो है इसके अंदर। और मैं यदि संसारी तरीके सीख के कर्म कर रहा हूं, संसारी तरीके सीख के दान कर रहा हूं, संसारी तरीके सीख के मैं सुख भोगने की कोशिश कर रहा हूं, ये अविवेक है। ये सारा का सारा अविवेक है। कितनी उन्नति कर रहा है समाज, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां इकट्ठी कर रहा है, लेकिन सारा का सारा अविवेक है। और इस विवेक के बिना जो शास्त्र में लिखा हुआ है, वाणी क्या कह रही है, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख होई। तो मेरा ये पशु कर्म है जिसको मैं अहंकार के साथ बड़ा दिन दुना रात चौगुना बढ़ा रहा हूं, ये मेरा पशु कर्म। तो इसीलिए गुरु की बात जब समझ में आती है, शास्त्र की बात जब समझ में आती है, तो मेरा अहंकार कहीं टिकता नहीं है। फिर अहंकार दिखा के मुझको शर्म आती है। जब मैं करने का अहंकार दिखाता हूं ना किसी को, तो मुझे शर्म आती है, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये विवेक के प्रकाश में जब आप जीवन जीते हो, तब आपका देह मद भी टूटता है। मैं देह हूं ये भाव से आप मुक्त होते हो। एकदम से तो मुक्त नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे मुक्त होते हो। क्योंकि अंदर जैसे जैसे साधना करोगे, आपके अंदर यदि वो ईश्वर का आनंद प्रकट हुआ, ईश्वर का आपको अनुभव अंदर शुरू हुआ, तो वो जो अंदर का ईश्वर का अनुभव है, वो अंदर के जो ईश्वर का प्रेम है, वही आपको देह मद से आजाद करवाएगा। और देह बंधन से मुक्ति कब मिलती है? जब उस ईश्वर में ये जीव स्थित हो जाता है। और मोक्ष कब मिलता है? जब वो उस ईश्वरीय सत्ता में लीन हो जाता है, अर्थात उसको ये बोध हो जाता है कि मैं वो सत्ता स्वयं हूं, अलग मुझसे वो सत्ता कभी थी ही नहीं। जिसको माजी कह रहे हैं प्रेमी अपने स्वरूप में स्थिति, उसी को माजी कह रहे हैं कि आत्मलीनताई, उसी को माजी कह रहे हैं सहज समाधि। कि जो आंख खुली है तब भी समाधि में है, चल रहा है तब भी समाधि में है, कर्म कर रहा है तब भी समाधि में है, इसलिए उसको सहज समाधि कहते हैं। तो मेरी मंजिल वो है सहज समाधि। वहां जाके फिर देह का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जीव मन रूपी बंधन से या सूक्ष्म शरीर से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। तो ऐसे जीव की देह कभी भी कहीं भी गिर जाए, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। जिसके बारे में महर्षि रमण ने कहा था एक बार, उनसे जब पूछा गया कि सत्पुरुष का देह से क्या संबंध होता है, तो उन्होंने कहा था कि कोई पथिक जा रहा है, कंधे पे उसके तौलिया रखी हुई है, रास्ते में गिर गई, उसको पता ही नहीं कहाँ गिर गई। तो सत्पुरुष के लिए देह इसी प्रकार होती है, वो अपने स्वरूप में स्थित है, देह से उसका कोई संबंध नहीं। अब बताइए कहाँ रहेगा अहंकार, कहाँ रहेगा कर्तव्य। तो इसीलिए ये मंजिल विचार करने से ही पता लग जाएगा, ये एक जन्म का काम नहीं है। लेकिन मैं जन्म की बात सोचता इसलिए नहीं हूं, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत है ही नहीं। जीव बात जीव के लिए हो रही है, बात देह के लिए नहीं हो रही है, बात जीव के लिए हो रही है। जीव सुन भी रहा है, जीव जो है देख भी रहा है, जीव अर्थात जीव अनुभव कर रहा है, जीव में चेतना है, जीव चेतन शक्ति ही है, इसलिए उसको ईश्वर का अंश कहा जाता है। देह को ईश्वर का अंश नहीं कहा जाता, जीव को ईश्वर का अंश कहा जाता है। तो मैं अपने चेतन स्वरूप को समझूं और अपने बंधन को समझूं, तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरी जो दैनिक दिनचर्या है ये चलनी चाहिए इस होश में, तब मैं विवेकशील प्राणी हूं, तब मैं गुरु भक्त हूं। इस व्यक्ति को ये समझ में आता है ये अहंकार कैसा जहर है। دیہ مد کیسا زہر ہے. اس زہر سے میں نے دھیرے دھیرے مکت ہونا ہے. تو پھر آپ کو ساری کیئیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں, شاستروں کی ان کا مہتو سمجھ میں آنے لگتا ہے. پھر آپ اچھا کر کے, دڑھ اچھا کر کے اس مارگ پر چلنے کی کوشش کرتے ہو. ایک دن بھی آپ برباد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو, کیونکہ انمول چیز ہے. پتہ نہیں میں نے آج تک کیسے سنسکار بنائے ہیں پاسٹ میں, آگے پتہ نہیں کیا درگتی ہوگی میری. تو اب تو ہوش میں آ جاؤں, زندگی کا اصلی وقت تو میں نے برباد کر دیا, آلریڈی برباد کر چکا ہوں. اب جو تھوڑا بہت بچا ہے, کیونکہ باقی بڑھاپے کا وقت بھی کیسا لاچاری کا وقت ہوتا ہے, تو اس لیے کچھ وقت ملا ہے, یہ میں اس کو اصلی کام میں لگا دوں. ایشور اس پہ مہر لگا رہا ہے, میرا گرو اس پہ مہر لگا رہا ہے, جس جیون کو اپنانے جا رہا ہوں اس پہ مہر لگا رہا ہے. پریمی تو یہی کام کرنے آیا ہے سنسار میں, تو میں کیوں سنساریوں کی باتیں سن سن کے بھٹکتا رہوں؟ اتنا تو پہلے ہی بھٹک چکا ہوں. تو صحیح سمجھو, صحیح کرو, اسی میں کلیان ہے. اوم برہم سکتے.